8 अक्टूबर दिन सोमवार, सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। ब्राजील में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पहले दौर का मतदान संपन्न।
ब्राजील की जो एलीट है यहाँ का, जो उच्च वर्ग है, वो बोल्सोनारो को सपोर्ट कर रहा है। ये काले लोगों के खिलाफ बोलते रहते हैं, जो होमोसेक्सुअल्स हैं उनके खिलाफ बोलते रहते हैं, महिलाओं के खिलाफ बोलते रहते हैं।
गुजरात में यूपी बिहार के लोगों पर हमले के सिलसिले में पुलिस ने 300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया।
मेरे को बोले उत्तर भारतीय, इतना बोला है खाली, मैंने आना कुछ भी नहीं बोला, इतने में तोड़फोड़ चालू कर दी, मेरे को मारा भी, परीक्षा भी तोड़ी और फिर मेरे को भगा दिया।
भारत में गठबंधन की राजनीति पर करेंगे चर्चा, अखबारों की सुर्खियां और खेल खिलाड़ी भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। ब्राजील में राष्ट्रपति के लिए हुए चुनाव के पहले दौर के मतदान संपन्न हो गया है। इन चुनावों में किसी भी उम्मीदवार को 50% से अधिक मत प्राप्त नहीं हो सके। चुनाव के बाद आए शुरुआती रुझानों के अनुसार दक्षिणपंथी नेता जेयर बोल्सोनारो को 48% मत, तो वहीं उनके प्रतिद्वंद्वी वामपंथी नेता फर्नांडो हदाद को 28% मत प्राप्त हुए हैं। अब 28 अक्टूबर को बोल्सोनारो और हदाद के बीच दूसरे चरण का मतदान होगा। इंटरपोल के प्रमुख मेंग होंगवेई चीन के कब्जे में हैं। चीन ने इसकी पुष्टि की है। मेंग होंगवेई कुछ दिन से लापता बताए जा रहे थे। चीन का कहना है कि होंगवेई को देश में कुछ कानूनों के उल्लंघन के मामले में पूछताछ के लिए रोका गया है। होंगवेई फ्रांस के लियोन शहर से लापता हो गए थे, जहां इंटरपोल का मुख्यालय है। उनकी पत्नी ग्रेस मेंग ने अपने पति के संबंध में एक भावनात्मक अपील की है। ग्रेस मेंग ने कहा है,
We are always connected by heart. He will support me doing this.
मैं अपने पति को देख नहीं सकती, लेकिन अब हम अपने अपने दिल के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह मामला न्याय और निष्पक्षता का है, यह मामला अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जुड़ा है और यह मामला मेरे अपने देश के लोगों से जुड़ा है। ये थे इंटरपोल के प्रमुख मेंग होंगवेई की पत्नी के शब्द। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोगान ने कहा है कि उन्हें अभी भी उम्मीद है कि सऊदी के लापता पत्रकार जमाल खाशोजी के संबंध में कुछ सकारात्मक समाचार सुनने को मिलेगा। खाशोजी पिछले हफ्ते इस्तांबुल से लापता हो गए थे। वे इस्तांबुल स्थित सऊदी के वाणिज्य दूतावास में गए, लेकिन उसके बाद से उनका पता नहीं चल पाया। तुर्की ने अंदेशा जताया है कि खाशोजी की हत्या कर दी गई है। अर्दोगान ने कहा कि वे निजी तौर पर इस मामले पर नज़र बनाए हुए हैं और जाँचकर्ताओं की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अर्दोगान ने कहा, मुझे अभी भी सकारात्मक समाचार की उम्मीद है। मुझे उम्मीद है कि हमें वो समाचार सुनने को ना मिले जो हम नहीं सुनना चाहते। उनकी मंगेतर भी ऐसा ही चाहती है। तुर्की का राष्ट्रपति होने के नाते मैं खुद इस मामले पर नज़र बनाए हुए हूँ और जैसे कि अंतिम रिपोर्ट आएगी मैं उसे दुनिया से अवगत करवाऊँगा। ये थे तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोगान के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने कहा है कि रूस और तुर्की के बीच इडलिब में अन असैन्यकरण वाला इलाका तैयार करना असल में महज एक अस्थायी कदम है। सीरिया की सत्ताधारी बाथ पार्टी की एक बैठक में असद ने कहा कि वे चाहते हैं कि जिन इलाकों पर इस्लामिक और विद्रोही समूहों का कब्जा है उन्हें सीरियाई सरकार के नियंत्रण में सौंप दिया जाए। कैमरून में राष्ट्रपति के लिए हुए चुनाव संपन्न हो गए हैं। पिछले 36 सालों से यहां पॉल बिया राष्ट्रपति पद पर मौजूद हैं। वे 7वीं बार राष्ट्रपति पद जीतने की उम्मीदों के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। कैमरून में मतों की गणना में कई दिन लग सकते हैं। यहां चुनाव के दौरान काफ़ी हिंसा देखने को मिली, कई जगह गोलीबारी की घटनाएं भी सामने आईं। अंग्रेजी भाषी इलाकों में हिंसा के चलते मत प्रतिशत कम रहा, जिसका फ़ायदा पॉल बिया को हो सकता है क्योंकि उनकी पकड़ फ्रेंच भाषी इलाकों में अधिक है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के बीच मुलाकात हुई, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के बीच होने वाली दूसरी मुलाकात की जगह और तारीख पर चर्चा की गई। इसके साथ ही बताया गया कि किम जोंग उन ने निरीक्षकों को पुनगेरी परमाणु परीक्षण साइट पर आने का न्योता दिया है, जिससे वे देख सकें कि उन्होंने इस साइट को खत्म कर दिया है। रोमानिया के देश में संविधान में समान सेक्स विवाह से जुड़ा जनमत संग्रह निरस्त हो गया। इस जनमत संग्रह को पास करने के लिए 30% मतों की जरूरत थी, लेकिन 20% लोग ही जनमत संग्रह में हिस्सा लिया। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है। आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत। मेरा नाम है संदीप सोनी। आप हमें रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन सकते हैं। लैटिन अमरीकी देश ब्राजील में नए राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट डाले गए हैं। मुख्य मुकाबला बोलसोनारो और फर्नांडो हदाद के बीच है। माना जा रहा है कि ये चुनाव ब्राजील की दशा और दिशा तय करने में अहम भूमिका अदा करेगा। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए नवीन नेगी से।
ब्राजील में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट डाले गए। देशभर में बने अलग अलग पोलिंग बूथ पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। राष्ट्रपति पद की दौड़ में दक्षिणपंथी नेता जेयर बोल्सोनारो सबसे आगे बताए जा रहे हैं। उनके सामने वामपंथी नेता और वर्कर्स पार्टी के उम्मीदवार फर्नांडो हदाद चुनौती पेश कर रहे हैं। चुनाव के बाद आए पहले एग्जिट पोल में बताया जा रहा है कि बोल्सोनारो को 48% मत प्राप्त हुए हैं, जबकि हदाद को 28% मत प्राप्त हुए। ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव में अगर किसी भी उम्मीदवार को 50% से अधिक वैध मत प्राप्त नहीं होते हैं तो 3 हफ्तों के भीतर दूसरे चरण का मतदान करवाया जाता है। इसका मतलब अब 28 अक्टूबर को बोल्सोनारो और हदाद के बीच दूसरे चरण का मतदान होगा। राष्ट्रपति पद के अलावा ब्राजील की जनता कांग्रेस के निचले सदन के सदस्यों और 1/3 सीनेट सदस्यों का चुनाव भी कर रही है। लगभग 15 करोड़ मतदाताओं ने अपने वोट का प्रयोग किया है। ब्राजील की जनता को इन चुनाव से कई उम्मीदें हैं।
E assim, nós eleitores somos responsáveis, né? E temos de eleger uma pessoa que vá...
एक मतदाता के तौर पर वोट देना हमारी जिम्मेदारी है और हमें एक ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो बदलाव ला सके। हमने बहुत अधिक भ्रष्टाचार झेला है। हमारा देश बहुत अमीर है और हम इसे गलत हाथों में नहीं देना चाहते। दक्षिणपंथी नेता जेयर बोल्सोनारो ने ब्राजील की जनता से भ्रष्टाचार और अपराध कम करने का वादा किया है। हालांकि उनके विरोधी उन्हें लोकतंत्र के लिए खतरे के तौर पर पेश कर रहे हैं। रियो डी जेनेरियो में वोट डालने आए बोल्सोनारो ने कहा, ब्राजील समाजवाद के इस रास्ते पर और अधिक नहीं चल सकता। आज जो हालात वेनेजुएला में देखने को मिल रहे हैं, हम अपना कल वैसा नहीं चाहते। वामपंथी नेता हदाद दूसरे चरण के मतदान के लिए बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, सबसे अहम बात यह है कि ब्राजील में दूसरे चरण का मतदान होगा। दूसरे चरण के मतदान में लोगों के पास मौका होता है कि वे अपने विकल्पों पर फिर से विचार कर सकें। यही वजह है कि मैं दूसरे चरण के मतदान के पक्ष में हूँ। एक तरफ जहाँ बोल्सोनारो को चुनावों में बड़ी बढ़त मिलती हुई दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ हदाद को ब्राजील के बेहद लोकप्रिय और फिलहाल जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा का समर्थन प्राप्त है।
रिपोर्ट सुना रहे थे नवीन नेगी। ब्राजील के इस चुनाव को बहुत डिवाइसिव कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस चुनाव को लेकर ब्राजील का मतदाता बहुत अधिक बटा हुआ है। इसकी वजह जानने के लिए मैंने साओ पाउलो में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार शोभन सक्सेना से बात की।
देखिए, अगर आप ब्राजील का इतिहास देखें तो यहाँ पे स्लेवरी, जो अफ्रीका तो स्लेव बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लाए गए थे। ब्राजील दुनिया का आखिरी ऐसा देश था जिसने स्लेवरी खत्म की 1888 में, सबसे बाद में, और यहाँ सबसे ज्यादा अफ्रीका से स्लेव लाए गए थे। जो ब्राजील की जो जनसंख्या है उसमें करीब 54% लेकर 60% लोग ऐसे हैं जो या तो अफ्रीकी मूल के हैं या उनको कहते हैं मिक्स रेस के हैं। कुछ उनमें यूरोपियन ब्लड है और कुछ अफ्रीकन है। इस तरह से ब्राजील की जो समाज है ये इस तरह से काफी समय से बटा रहा है। हमेशा 40% यहाँ की जनसंख्या है श्वेत है या व्हाइट है। ब्राजील में जो अपर क्लास बोलते हैं या जो रूलिंग एलीट यहाँ का, वो ज्यादातर व्हाइट यूरोपियन ओरिजिन के लोग हैं। पढ़े लिखे लोगों में भी उनकी संख्या काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे हमेशा ऐसा समाज होने के बावजूद जिसमें 60% लोग अफ्रीकी मूल के हैं, यहाँ पे जो व्हाइट लोगों का दबदबा हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, उनका दबदबा बना हुआ था। अब क्या हुआ कि ब्राजील में 2002 में वर्कर्स पार्टी, जो कि यहाँ की एक लेफ्ट विंग पार्टी थी, वो सत्ता में आई। उन्होंने यहाँ आके काफी मूलभूत परिवर्तन किए, जैसे कि उन्होंने रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस किया, गरीबों का भत्ता काफी बढ़ाया, मिनिमम सैलरी यहाँ पे कुछ नहीं थी उसको उन्होंने बढ़ाया। तो इसकी वजह से जो यहाँ पे करीब 10 साल में 4.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, तो उसमें एक तरह का यहाँ के जो उच्च मध्यम वर्ग है या उच्च वर्ग है, उनमें एक अजीब तरह का रिएक्शन हुआ और उसके खिलाफ एक रिएक्शन हुआ। आज की जो ब्राजील की राजनीति है वो इसी बारे में है। तो इस समय ब्राजील में एक क्लैश हो रहा है, एक सोशल डेमोक्रेसी का मॉडल है और एक दक्षिणपंथी मॉडल है। इसकी वजह से ब्राजील का समाज जो है काफी बटा हुआ है।
ये जो बोल्सोनारो हैं ब्राजील को फिर से महान बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने से पहले अमेरिका में नारा दिया था। बोल्सोनारो के बारे में हमारे श्रोताओं को और बताएं।
बोल्सोनारो एक आर्मी के कैप्टन थे और काफी साल से रिटायर हो गए, और इनके जो राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी कि एक आर्मी की यूनियन थी उसके नेता थे ये रियो डी जनेरो में, लेकिन धीरे धीरे ये पॉलिटिक्स में आ गए और ये जो यहाँ की कांग्रेस है उसमें एक ये संसद सदस्य बन के आए। तो उनका जो मुख्य आधार है आर्मी आर्म फोर्स पुलिस मुख्य जनाधार हमेशा से यही रहा है। आपको ये मैं याद दिलाना चाहूंगा कि ब्राजील में 1964 से लेकर 1985 तक मिलिट्री डिक्टेटरशिप रही थी, उसमें हजारों लोग मारे गए थे और फिर ब्राजील वापस 1989 में फिर से डेमोक्रेसी बना। लेकिन बोल्सोनारो ने अपना पूरा राजनीतिक करियर जो है उन्होंने इसी बातें बनाया है कि इन्होंने हमेशा डिक्टेटरशिप को बहुत महान बताया है, उसके ये हमेशा गुणगान करते रहते हैं और कहते रहते हैं कि ब्राजील में डेमोक्रेसी नहीं चलेगी, मैं फिर से ब्राजील को डिक्टेटरशिप बनाना चाहता हूँ। ये चुनाव के रास्ते सत्ता में आना चाहते हैं। इसमें बहुत मुख्य बात ये ध्यान रखने की है कि ये खुद आर्मी से हैं और इनके जो वाइस प्रेसिडेंट के जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्मर आर्मी जनरल हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो उनका जो कैबिनेट होगा उसमें पुराने जनरल्स और आर्मी के एयरफोर्स के उनसे पूरा भरा रहेगा। और इनकी जो राजनीति है वो बेसिकली जो कहते हैं कि हेट बेस्ड, ये काले लोगों के खिलाफ बोलते रहते हैं, जो ब्राजील में होमोसेक्शुअल है उनके खिलाफ बोलते रहते हैं, महिलाओं के खिलाफ बोलते रहते हैं। तो ब्राजील की जो एलीट है यहाँ का जो उच्च वर्ग है वो बोल्सोनारो को सपोर्ट कर रहा है और इसी वजह से उनकी लोकप्रियता बढ़ी है और वो एक बहुत बड़े दावेदार बन गए हैं ब्राजील के राष्ट्रपति के। आज
ये जो दूसरे उम्मीदवार हैं फर्डिनेंडो हदाद, ये किस शख्सियत के मालिक हैं, इनके बारे में भी बताइए।
देखिए फर्नांडो हदाद बेसिकली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और एक लॉयर हैं। ये 6 साल तक ब्राजील के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और उस बीच में जब ये शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने यहाँ पे ब्राजील में बहुत मूलभूत परिवर्तन किए हैं, जो अफ्रीकी मूल के लोग हैं उनके नए दरवाजे खोले हैं। उसके बाद 2012 से 2016 तक ये साओ पाउलो के मेयर थे। साओ पाउलो को उन्होंने पूरी तरह से एक नए शहर में परिवर्तन कर दिया। हालांकि इनको बहुत ज्यादा लोग लेफ्ट विंग नहीं मानते, इनको एक सेंट्रिस्ट पॉलिटिशियन मानते हैं और ये ब्राजील के सबसे जाने माने इंटेलेक्चुअल्स में से आज है। ये शायद ब्राजील का इतना इतिहास रहा है कि आप इंटेलेक्चुअल्स पहले भी राष्ट्रपति बन चुके हैं। अभी हालांकि बहुत कहना मुश्किल है, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गया ब्राजील का इलेक्शन, लेकिन ये लग रहा है कि अगले राउंड में बोल्सोनारो के साथ हदाद भी जाएंगे अगले राउंड में और अगले राउंड में बहुत कड़ी टक्कर होगी दोनों पदवीधरों के बीच।
ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव और प्रमुख उम्मीदवारों का विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार शोभन सक्सेना।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
रुख कर रहे हैं भारत का। गुजरात के साबरकांठा जिले में पिछले हफ्ते 14 महीने की एक बच्ची के साथ कथित बलात्कार के मामले में बिहार के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों पर हमले की कई घटनाएं हुई हैं।
मेरे को बोले उत्तर भारतीय, इतना बोला है खाली, मैंने आना कुछ भी नहीं बोला, इतने में तोड़फोड़ चालू कर दी, मेरे को मारा भी, परीक्षा भी तोड़ी और फिर मेरे को भगा दिया, बोले यूपी के यूपी भाग जाओ वापस।
मजदूरी करके पैसा इकट्ठा करके इसको ऑपरेशन कराया, जिसी का लिए उसी को देने पड़ेगा, वो हमको हैरान भी करते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आए हैं पर इसे इधर से हमको भगा रहे हैं।
इन घटनाओं के सिलसिले में गुजरात पुलिस ने 300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। गुजरात के पुलिस महानिदेशक शिवानंद झा।
रफली 6 मेजर जिले के ऊपर असर आई है, सुरेंद्रनगर में एक छोटा सा इंसिडेंट है, पर जो मेन जिले प्रभावित हुए थे वो मेहसाना और साबरकांठा है और अहमदाबाद शहर का थोड़ा एरिया एक साइड का था, वो मेन प्रभावित हुए थे। इन 7 जिलों में और शहर के अंदर 42 गुने दाखिल हुए हैं और उसमें अभी तक हमने 342 अक्यूज तोहमतदार पकड़े हैं। डीआईजी गांधीनगर का रेंज सबसे अधिक प्रभावित हुआ था और उनको कहा गया है कि जिस विस्तार में ये बनाव बन रहे हैं उस विस्तार में कैंप रख के उसकी सुपरविजन करें, अरेस्ट कराएं, फीलिंग ऐसा पैदा करें इस एरिया में कि लोग वहां से स्थानांतरण ना करें।
वहीं गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने बच्ची के साथ बलात्कार मामले में दोषी व्यक्ति को फांसी की सजा देने की मांग की है।
ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर चले उसके लिए हमने नामदार हाईकोर्ट को विनती की है। हम चाहते हैं कि ऐसी बलात्कार करने वाले को फांसी की सजा मिले ताकि आने वाले दिनों में कोई ऐसी छोटी लड़कियों के सामने इस दृष्टि से देखने की हिम्मत न करे।
वहीं कांग्रेस के विधायक अल्पेश ठाकुर ने कहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों पर कथित हमले के लिए उनके समर्थकों पर झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने इसके विरोध में 11 अक्टूबर से सद्भावना उपवास पर बैठने की चेतावनी दी है।
गुजरात में ऐसा कोई माहौल ही नहीं है जिस तरह से बताया जा रहा है। ये अफवाहों का बाजार है और गुजरात के अंदर जितने भारतीय हैं वो जो गुजरात में सुरक्षित है उतने तो कहीं भी किसी भी स्टेट में सुरक्षित नहीं है। तो एक प्रकार की ये माहौल बनाया जा रहा है और राजनीति हो रही है, नहीं होनी चाहिए। हमने कभी भी वायलेंस को समर्थन नहीं किया और ना करेंगे, और इस तरह का जो माहौल बनाया जाए ऐसा माहौल गुजरात में है ही नहीं।
इन तमाम बयानों के बीच बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर गुजरात से अपने राज्य वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि गुजरात के पुलिस महानिदेशक शिवानंद झा का दावा है कि दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा भी इन लोगों के जाने की एक वजह है। हालांकि छठ पूजा में अभी काफ़ी वक्त है। लौटते हैं गुजरात से दिल्ली। आइए एक नज़र दिल्ली से छपने वाले अखबारों की सुर्खियों पर। नवीन, बताएं आज के अखबार क्या कह रहे हैं।
जी संदीप, जैसे कि अभी हम सुन रहे थे गुजरात में यूपी और बिहार के लोगों पर जिस तरह के हमले हो रहे हैं, उसी खबरों से जो है अखबार भी आज काफ़ी सारे छपे हुए हैं उस खबर को लेकर। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक रविवार को वडोदरा में यूपी और बिहार के लोगों कम से कम 15 मजदूरों पर हमला किया गया। पुलिस ने यह भी कहा है कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों के बीच यूपी और बिहार के मजदूरों के प्रति रोष पैदा करने वाले संदेश फैलाए जा रहे हैं। ऐसे संदेश फैलाए जा रहे हैं कि ये लोग बिहार से आते हैं और हमारी नौकरियां छीन लेते हैं, तो लोगों में गुस्सा पैदा किया जा रहा है। इस तरह की बातें इन खबरों में लिखी गई हैं। जम्मू कश्मीर में आज स्थानीय निकाय चुनाव के पहले दौर का मतदान होना है संदीप जी, और घाटी में चुनाव जैसी कोई रंगत देखने को नहीं मिल रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पहले पन्ने पर एक खबर छापी है और बताया है कि आज जम्मू कश्मीर के स्थानीय निकाय चुनाव लगभग एक दशक से भी लंबे वक्त के बाद होने वाले हैं, लेकिन ना तो दीवारों पर उम्मीदवारों के बैनर लगे हैं, ना ही पोस्टर लगे हैं, और ना ही वहां के जो लोग हैं उनको पता है कि उनके उम्मीदवार कौन हैं। और चार चरणों में होने वाले इन चुनावों के पहले चरण में आज कश्मीर के 8 जिलों में वोट डाले जाने हैं। सबरीमाला मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही केरल की सरकार अजीब सी पशुपेश में फंस गई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने यह खबर छापी है और अखबार लिखता है कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सबरीमाला मंदिर के पुजारी को बातचीत का न्योता दिया था, लेकिन मंदिर के पुजारी ने मुख्यमंत्री से मिलने और बात करने से इनकार कर दिया है।
इसकी वजह बताई है अखबार ने।
वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सभी उम्र की महिलाओं को मंदिर में जाने की इजाज़त दी थी, लेकिन पूरे राज्य में जो है इस फैसले के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करे। हिंदुस्तान टाइम्स में ही एक और खबर प्रकाशित हुई है जिसके अनुसार दिल्ली का मंगोलपुरी जो इलाका है वो देश की राजधानी का सबसे अधिक खतरनाक इलाका है।
कभी गए हैं आप वहाँ?
मैं आज तक कभी नहीं गया, लेकिन इस अखबार की एक टीम वहाँ गई और उन्होंने एक हफ्ता वहाँ गुजारा और तब ये रिपोर्ट उन्होंने पेश की है।
बहुत शुक्रिया नवीन नेगी से समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने के बाद अब बात गठबंधन की राजनीति की। हाल ही में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा कि वो कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगी और मध्य प्रदेश, राजस्थान में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। इसके तुरंत बाद कांग्रेस को संभलने का मौका दिए बगैर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने तल्ख तेवर दिखाते हुए कहा कि कांग्रेस ने बहुत इंतज़ार कराया है, अब और इंतज़ार नहीं कर सकते। उन्होंने भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बसपा से गठबंधन का ऐलान किया। क्या इस पूरे घटनाक्रम को महागठबंधन में पड़ती दरार के रूप में देखा जाना चाहिए? सुनिए मानसी दास की रिपोर्ट।
कुछ महीनों पहले कांग्रेस के साथ एक मंच पर कई क्षेत्रीय पार्टियां नजर आईं और लोकसभा चुनावों में भाजपा से मुकाबला करने के लिए महागठबंधन की बात होने लगी, लेकिन जल्द ही इन पार्टियों के एकजुट रहने के दावों पर भी सवाल उठने लगे। हाल में मायावती और अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस का साथ छोड़ने का फैसला किया और एक बार फिर महागठबंधन में दरार जैसी चर्चा तूल पकड़ने लगी। वरिष्ठ पत्रकार बद्रीनारायण कहते हैं,
महागठबंधन सिर्फ कांग्रेस की जरूरत नहीं है, इन छोटे दलों की भी जरूरत। अगर मायावती और अखिलेश अलग अलग लड़े तो उत्तर प्रदेश में क्या हालत होगी दोनों की? कंपल्सन है इन क्षेत्रीय दलों का भी कि बीजेपी के खिलाफ वो एक होकर लड़े। उस महागठबंधन में कांग्रेस का क्या रोल होगा, ये एक अलग सवाल है।
वहीं जिन राज्यों में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में महागठबंधन और इसमें कांग्रेस की भूमिका के बारे में वरिष्ठ वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई कहते हैं,
कांग्रेस ये जानती है कि वो जब तक अपने पैरों पे मजबूत नहीं खड़ी होगी, और इसका मतलब ये है कि वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कम से कम दो राज्यों में तो वो उसको जीत हासिल करनी होगी, ताकि वो उसकी एक नेशनल पार्टी का स्टेटस हो। देखिए, भारत का मानचित्र देखें तो अधिकतर राज्यों में या तो कांग्रेस का अपना राजनीतिक अस्तित्व जो है बहुत कम हो गया है, या वो गठबंधन के ऊपर निर्भर करती है।
लेकिन क्या इन राज्यों के चुनावों पर महागठबंधन के होने या ना होने का कोई असर भी पड़ेगा?
मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की राजनीति में कभी भी गठबंधन की राजनीति नहीं हुई है, वहाँ सीधी लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच में होती है।
वहीं इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार बद्री नारायण कहते हैं,
थोड़ा बहुत जरूर पड़ेगा मध्य प्रदेश में, क्योंकि प्रदेश में बीएसपी का दलित आधार, तो वहाँ पे वो एक बोटकटुआ पार्टी और कांग्रेस को कमजोर कर सकती है, लेकिन सिर्फ वो कांग्रेस का काटेंगी तो कांग्रेस लूज कर सकती है चुनाव इन दो राज्यों में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और राजस्थान में तो हराना है तो बीजेपी को अगर हरा सकने की स्थिति में तो कांग्रेस अकेले ही हरा सकती है, उसमें बीएसपी को जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे ट्रिकी है उत्तर प्रदेश का गठबंधन, अगर ये बन जाता है, महागठबंधन यहाँ बन जाता है, तो फिर पूरे देश की पॉलिटिक्स को प्रभावित करेगा।
बद्री नारायण समझाते हैं कि महागठबंधन को विधानसभा चुनावों से हटकर देखा जाना ही सही होगा।
जो नेशनल पॉलिटिक्स होगा, नेशनल इलेक्शन 2019, उसमें महागठबंधन का बनना तय है, फॉर्म चाहे जो हो। फॉर्म चाहे ये हो कि भाई हम ठीक है, हम दो मिलकर लड़ेंगे और कांग्रेस के लिए 10-8 सीट छोड़ देंगे, कांग्रेस अपना अलग लड़े।
महागठबंधन की बात हो तो दो महिला नेताओं का नाम सबसे पहले सामने आता है, तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी और बसपा प्रमुख मायावती। दोनों नेता पहले भी गठबंधन को लेकर सावधानी बरतती देखी जाती रही हैं। रशीद किदवई कहते हैं,
मायावती और ममता बनर्जी दोनों प्रधानमंत्री पद की दौड़ में हैं, और उन्हें लगता है कि जितनी उनके पास लोकसभा की सीटें होंगी उससे उनकी दावेदारी मजबूत होगी। समस्या ये कि दोनों नेताओं की बंगाल और उत्तर प्रदेश के बाहर कोई लोकसभा सीट मिलने की उम्मीद बहुत कम है।
लेकिन महागठबंधन का सूत्रधार बनना और खुद को इस जिम्मेदारी के लिए साबित करना कांग्रेस का काम है। बद्री नारायण के शब्दों में,
एक तरह से कहेंगे ना, समुद्र मंथन से जैसे अमृत निकलता है ना, इट्स लाइक दैट, वैसे होगा ये। लेकिन समुद्र मंथन में एक तो जिससे मंथन किया गया था ना, वो जो, तो इसमें किसी एक को मथनी और एक को शेषनाग बनना होगा।
आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। मानसी दास, BBC दिल्ली।
और इस रिपोर्ट के साथ ही पाकिस्तान से वस्तुल्ला खान की डायरी आ पहुंची है, आइए आपके साथ साथ हम भी इसके पन्ने पलटते हैं।
बचपन में सारा साल ये इंतज़ार करते गुजरता कि कब ईद आएगी और मैं ईदगाह के बराबर वाले मैदान में लगने वाला लकी ईरानी सर्कस देखने जाऊंगा। सर्कस क्या था, पूरा पैकेज था। बड़े खेमे के बाहर एक फट्टे पे हिजड़े नाचा करते थे, खेमे के अंदर एक रस्से से लटकते जिमनास्ट उड़ के दूसरे रस्से को इतनी ऊंचाई पे पकड़ते कि दिल उछल के हलक में आ जाते। दो हाथी लकड़ी की एक बड़ी पीढ़ी पे अपने अगले पैर जमा के जोर से चिंघाड़ते और फिर सूंडे उठा के सलामी पेश करते और फिर रिंग का चक्कर काट के इन्हीं सूंडों में तमाशाइयों से नोट पकड़ के महावट के हवाले करते। मगर मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा उन दो मसखरों को देख के आता जिनके चेहरों पे लाल सफ़ेद पेंट पुता हुआ होता और वो रिंग में कलाबाजियाँ मारते हुए दाखिल होते, एक दूसरे को जलील करने वाले जुमले बोल बोल के एक दूसरे के पेट पे चमड़े के लित्तर मारते और तमाशा देखने वालों के पेट में हंस हंस के बल पड़ जाते। अब मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ और लकी ईरानी सर्कस भी नहीं लगता। इसके बदले अब मैं पूरा वर्ष सिर्फ एक महीने का बहुत बेचैनी से इंतज़ार करता हूँ, कब सितंबर आएगा, कब संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली की वार्षिक बैठक होगी जिसमें भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री एक दूसरे के मुंह पे कालक फेंकेंगे और उनके जाने के बाद एक देश के मंत्रालय के जूनियर अफसर दूसरे देश का कच्चा चट्ठा खोलने और घटिया साबित करने के हर हर मौके से फ़ायदा उठाएंगे। और जैसे ही जनरल असेंबली की महीने भर की वार्षिक बैठक ख़त्म होगी, बचे हुए तीर, भाले, नेजे, तलवारें मुगदर लपेट लपाट के दिल्ली और इस्लामाबाद लौट जाएंगे और फिर अगले वर्ष की तैयारी के लिए इन हथियारों को जहर में भुजाने या सान पे तेज करने के लिए रख छोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि संयुक्त राष्ट्र वार्षिक सम्मेलन में कालम गलोच का मुकाबला इंडिया पाकिस्तान के बीच ही होता है। ईरान, इसराइल, सऊदी अरब, चाइना, अफगानिस्तान, फलस्तीन, रूस, अमेरिका, उत्तरी कोरिया जैसे देश भी एक दूसरे की जम के खबर लेते हैं। मगर जैसा मनोरंजन इंडिया और पाकिस्तान बाकी देशों के लिए रचाते हैं उसकी तो बात ही अलग है। अगर इंडिया पाकिस्तान न्यूयॉर्क में हर साल अपना सर्कस ना लगाएं तो जनरल असेंबली में लंबी लंबी बोर तकरीरों के सिवा क्या बचेगा।
ये थे पाकिस्तान से वस्तुल्ला खान और अब साप्ताहिक अंक खेल खिलाड़ी।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। पिछले दिनों भारत की सीनियर टीम ने रोहित शर्मा की कप्तानी में एशिया कप जीता तो कल भारत की अंडर 19 टीम ने भी एशिया कप अपने नाम किया। बांग्लादेश के ढाका शहर में आयोजित हुए अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में कल भारत ने श्रीलंका को 144 रन से हराया। इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल के 85, अनुज रावत के 57 और कप्तान विकेटकीपर बल्लेबाज सिमरन सिंह के नाम बाद 65 रन की मदद से निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट खोकर 304 रन बनाए। जवाब में श्रीलंकाई टीम 38.4 ओवर में महज 160 रन पर सिमट गई। उधर कल से दुबई में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ जहां पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट खोकर 255 रन बनाए। पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज ने 126 और इमामुल हक ने 76 रन बनाए। और अब समीक्षा। इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज 4-1 से हारने के बाद क्या वेस्टइंडीज से खेलकर ऑस्ट्रेलिया से पार पा सकेगी टीम इंडिया?
घर पे वेस्टइंडीज के साथ खेल के आप ये नहीं कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए ये बेस्ट आपकी तैयारी है। विपरीत आपको वहाँ पे कंडीशंस मिलेंगी। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी वेस्टइंडीज से बेहतर है। भारत ने आज तक कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ये सुनहरा मौका है आपके पास। लोग कहेंगे इंग्लैंड में भी था आपके पास मौका, पर इंग्लैंड में हम 2 मैच तो जीत सकते थे, बहुत क्लोज हारे हैं।
ये मानना है क्रिकेट समीक्षक विजय लोकपल्ली का। जब हमने उनसे जानना चाहा कि घर में वेस्टइंडीज को पहले टेस्ट मैच में एक पारी और 272 रन से हराकर मिली ऐतिहासिक जीत का जश्न जरूर मनाया जाए, लेकिन क्या भूल जाएं कि पिछले दिनों कैसे इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज हारे और ऑस्ट्रेलिया से उसी की जमीन पर टेस्ट सीरीज खेलनी है जिसे आज तक भारत कभी जीत नहीं सका। अब रही बात इंग्लैंड से 2 मुकाबले नजदीक से हारने की, तो हार तो आखिरकार हार ही है। दूसरी तरफ वेस्टइंडीज की टीम तो पहले टेस्ट मैच में ऐसे खेली जैसे उसे घर जाने की जल्दी हो। भारत ने तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 1 गेंद कम पूरे 150 ओवर खेले, वो भी 9 विकेट गंवाकर, लेकिन वेस्टइंडीज तो फॉलो ऑन के बाद लगातार 2 बार खेलकर भी कुल मिलाकर पूरे 100 ओवर भी नहीं खेल सकी। कभी वेस्टइंडीज की तूफानी पेस बैटरी का सामना कर चुके और साल 1983 में वेस्टइंडीज को ही फाइनल में हराकर विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के ऑलराउंडर रहे मदन लाल तो जैसे इस टीम के खेल से ही बेहद नाराज हैं।
इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, टेस्ट मैच खेल रहे हैं, कम से कम उनको टेम्परामेंट दिखाना चाहिए, कम से कम उसको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है इंडिया की जो टीम है वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है, फिर भी कुछ तो थोड़ी सी फाइट तो जरूर होती है। ये तो फाइट भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे मार रहे हैं जैसे कोई गली मोहल्ले में खेल रहा है।
अब अगर वेस्ट इंडीज कमजोर तो इसमें दमदार भारत का क्या कसूर? कभी अपनी पिचों पर क्लाइव लॉयड की कप्तानी में वेस्ट इंडीज की टीम भारत की ऐसी ही गत बनाती थी, पर जब ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज खेली जाएगी तो क्या पहले की ही तरह टीम इंडिया बैकफुट पर रहे और अगर इससे बचना चाहे तो क्या करे? विजय लोकपल्ली एक पहेली भरा सुझाव देते हैं।
अगर हम कहें कि आप यंगस्टर को चांस दीजिए, सीनियर्स को रेस्ट कीजिए, तो ब्रॉडकास्टर को फर्क पड़ता है, वो कहते हैं कि उनके फिर टेलीकास्ट को कोई नहीं देखेगा। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है, इनको भी शायद सीनियर्स को खेलना पड़ता है। पर अगर ये जो वनडे सीरीज है सब छोड़ के हमारे जो बैट्समैन है स्पेशली उनको आप ऑस्ट्रेलिया भेज दीजिए, 15-20 दिन पहले भेज दीजिए, वहां पे उनके साथ मारे ही बॉलर्स को भेजिए जो उनको मिनट्स में बॉल डालेंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, उनको ये वनडे सीरीज खेल कोई हासिल नहीं होने वाला है।
वहीं इन दिनों मलेशिया में सुल्तान ऑफ जोहोर कप हॉकी टूर्नामेंट खेला जा रहा है जिसमें 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इनमें मेजबान मलेशिया के अलावा भारत, ग्रेट ब्रिटेन, जापान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम हिस्सा ले रही है। इस टूर्नामेंट में भारत ने बीते शनिवार को मलेशिया को 2-1 से हराया, लेकिन इसके बाद कल खेले गए मुकाबले में उसने न्यूजीलैंड को 7-1 से मात दी। इस टूर्नामेंट में आज अवकाश का दिन है जबकि कल ग्रेट ब्रिटेन का सामना ऑस्ट्रेलिया से, जापान का भारत से और न्यूजीलैंड का सामना मलेशिया से होगा।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुनते हैं नवीन नेगी से।
बीबीसी समाचार। ब्राजील में राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर का मतदान संपन्न हो गया है। इंटरपोल के प्रमुख मेंग होंगवेई चीन के कब्जे में हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने कहा है कि रूस और तुर्की के बीच इदलिब में असैन्यकरण वाला इलाका बनाना महज एक अस्थायी कदम है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। अगला प्रसारण दिन भर भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन bbchindi.com आपके साथ है।